بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد نهج البلاغة کے خطبات و مکتوبات کی روشنی میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی موقف آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا. ہم نے گزشتہ دروس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف مکتوبات اور خطبات کو ملاحظہ کیا اور ہم نے یہ جانا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں حکومت کی کیا قیمت اور اہمیت ہے, اور ہمیں معلوم ہوا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام حکومت ضروری سمجھتے ہیں, لیکن ان کی نگاہ میں اگر حکومت دنیا کا ایک مقصد ہو اور زینت دنیا کے حصول کے لیے ہو یا اپنی شہوات کی غرض سے ہو تو یہ بکری کی چھینگ سے بھی پستر ہے, یا ایسا جوتا کہ جس کو مزید گانٹا نہیں جا سکتا, اس سے بھی کم قیمت یہ حکومت ان کی نظروں میں ہے. لیکن اگر اسی حکومت سے وظائف شرعیہ کو انجام دیا جائے, مظلوم کو اس کا حق دیا جائے, عدل و انصاف کو قائم کیا جائے, تو اس حکومت کو وہ بلند تر ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں. اسی ضمن میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں حکومت کے حصول کے بعد کن مسائل کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ مسائل ایک ریاست میں کثیر ہوتے ہیں, خصوصاً اس دور میں جب پورے کے پورے عالم اسلام میں فتنے اجاگر ہو گئے اور ایک حملہ انہوں نے دارالخلافہ کے اوپر کیا اور اس وقت کے خلیفہ خلیفہ سوم انہیں قتل کر دیا گیا. تو ایسے فتنوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مسائل کو اہمیت کا حامل سمجھا اور بقیہ مسائل کے اوپر ترجیح دی؟ تو یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سب سے اہم ترین مسئلہ وہ ظلم و ستم کا قیام اور خیانتوں کا ہونا تھا. لہذا اگرچہ بہت سارے مسائل تھے اس دور میں کہ جن کو مطرح کر کے جن کو مورد بحث قرار دے کے اس کی اصلاح فی الفور کرنا چاہیے تھیں, لیکن تمام امور کے لیے زمینہ فراہم ابھی نہیں تھا. اس لیے بعض امور کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیا اور بعض کو انہوں نے دیگر مسائل کے اوپر مقدم کرتے ہوئے انہیں پہلے انجام دیا. اسی ضمن میں یہ تیسرا ہمارے پاس پہلو آیا, کیونکہ یہ مباحث آپس میں اسی طریقے سے منسلک رہیں گی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کیا ان کی نگاہ میں نظام سیاسی یا نظام حکومت تھا, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس نظام سیاسی و نظام حکومت کو کس جہت سے دیکھتے تھے. آئندہ انشاءاللہ آنے والے مباحث میں یہ تفکر مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے گا, کیونکہ جو وہ سیاسی تفکر رکھتے ہیں اس سیاسی تفکر کی جھلک ان کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. لہذا تیسرا پہلو ہم نے یہ اٹھایا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حکومت کرنا چاہیں تو اس حکومت کرنے میں وہ کس روش کو اختیار کریں گے, کیونکہ مختلف روشیں ہوتی ہیں. البتہ اس طرف بھی توجہ رہے کہ یہ دوسرے ہمارے پہلو سے ایک حد تک سازگار بات بھی بنتی ہے. مثال کے طور پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک مسئلے کو سب سے حساس طریقے سے دیکھتے ہیں اور دیگر تمام مسائل کے اوپر اسے ترجیح دیتے ہیں, تو یہ تمام مسائل کے اوپر اسے ترجیح دینا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ ایک روش کو بھی بیان کرتا ہے. مثلا اس دور میں ظلم و ستم بھی تھا, خیانت بھی تھی, اور اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے کہ بصرہ میں جب تشریف لے گئے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تو وہاں پہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ نے رسول اللہ کی نماز ہمیں یاد دلا دی ہے. یعنی اس قدر انحرافات برپا ہو گئے تھے کہ امت کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ نماز جو ہے اس کے آثار بٹنا شروع ہو گئے. لہذا آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کس مسئلے کو ابھارا, اور وہ مسئلے کی جہت سے بھی ہے اور روش کی جہت سے بھی ہے, اور وہ ہے عدالت. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت, اس کا عنوان और उसका असल मरकज़ जिसके गिर्द तमाम के तमाम मसाइल घूमते हैं, या असल मीज़ान और मेयार जिसकी तराजू में इमाम अली अलैहिस्सलाम हर मसले को तोलते हैं, उसका नाम है अदालत। क्योंकि अदालत को दीन इस्लाम ने इंतहाई अहमियत दी। जिस जगह पर अदालत नहीं है उस जगह पर जुल्म आ जाता है, इनके दरमियान कोई वासिता नहीं है। या तो अदालत के ऐन मुताबिक अमल करार पाएगा, अगर अमल अदालत के ऐन मुताबिक नहीं है तो वह जुल्म करार पाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अदालत को बहुत बड़े पैमाने पर उजागर किया, और यही वजह बनी कि मुस्तकबिल में फिर जो आने वाले फ़िरकाजात थे उसमें उन्होंने अदालत ही के मसले को मुसलमान फ़िरकाजात ने मौरिद बहस करार दिया। यहाँ तक कि इमामिया मकतब तशय्यो इसे अकायदी तौर पे अदलिया से भी ताबीर किया जाता है। क्योंकि इनका नज़रिया यह है कि हर अमल, क्योंकि एक हुस्न कुबह अकली और शरई का मसला खड़ा हुआ मुसलमानों में, कि बाज़ फ़िरकाजात इस बात के कायल थे के बाज़ाते ख़ुद एक अमल में ना हुस्न पाया जाता है और ना कबाहत पाई जाती है। इसके मुकाबले में मकतबे तशय्यो का नज़रिया ये बना कि नहीं, एक अमल में बाज़ाते ख़ुद हुस्न भी पाया जाता है और कबाहत भी पाई जाती है। अलबत्ता उसमें तीन तकसीमों में से सिर्फ पहली किस्म में ये बात पाई जाएगी, बकिया दो में नहीं। और वो पहली किस्म यही है कि हर वो अमल जो अदालत के मीज़ान पर उतरे उसको हम हुस्न कहेंगे, और हर वो अमल जो अदालत के मेयार पे ना उतरे उसे हम कबीह कहेंगे। और इस बात का इल्म और इदराक वो अक्ल इंसानी कर सकती है, लिहाजा इमामिया इस बात के कायल हुए कि आमाल में हुस्न कुबह अक्ली पाया जाता है। मज़ीद इसकी तफसीलात भी हैं और इसको हिकमत नज़री और हिकमत अमली के ज़ैल में उसूलियों ने मौरिद बहस करार दिया कि जिससे हम इज्तनाब करते हैं। सिर्फ ये बात बयान करना मकसूद थी कि मुस्तकबिल में इसी तरह से जो मकातब फ़िक्र मिल्लत इस्लामिया में तशकील पाए उनमें अदालत की कीमत और अहमियत या अदालत की कीमत और अहमियत का सानवी होना यह मौरिद बहस इसी तरीके से रहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत में और उनके जितने भी आमाले सियासी थे या उन्होंने सियासी और हुकूमती उमूर में मदाखलत करते हुए और उसको इजरा करते हुए जिस शय को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा वो अदालत का अमर था, और यही अदालत का अमर हमें दीन इस्लाम में इसी अहमियत के साथ नज़र आता है कि एक छोटी सी इमाम जमात भी अदालत के वस्फ़ के बग़ैर कायम नहीं हो सकती। एक नमाज जुमा है, यानी जहाँ पे इज्तिमाई उमूर का ताल्लुक़ है वहाँ पे अदालत का तसव्वुर पाया जाता है, ना कि करीबी ताल्लुक़ का तसव्वुर, ना कि किसी और रिश्तेदारी का तसव्वुर, और ना ही कोई ऐसी खिदमात का तसव्वुर कि जिसको सराहा जाए लेकिन वो उस सराहे जाने की वजह से मुस्तकबिल में किसी चीज़ का खाहां हो जाए। और ये सब के सब उमूर इमाम अली अलैहिस्सलाम को झीलने पड़े, जैसा कि आप जनाबी अकील का वाक़िया भी देख चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला आप आगे मुलाहिजा करेंगे कि जनाब तलहा व जनाब ज़ुबैर के उनकी खिदमात वसी पैमाने पे आलम इस्लाम में रही, जंगों में रही, खसूसन जनाब ज़ुबैर बिन अवाम के उनकी बहुत खिदमात थी कि मुदाफ़े खाने जनाब सैयदा सलामुल अलैहा भी रहे और हमेशा अहले बैत अलैहिम सलाम के मुहाफ़िज़, मुदाफ़े और पैरोकार रहे, सख्तियाँ झीलें। लेकिन इख्तिताम के ऊपर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खिलाफ उनको उकसाया गया और जंग जमल में मुकाबले में ला खड़ा किया गया। और उसमें बुनियादी अनासिर जो तारीख़ से हमें मिलता है वो यही है कि वो अपनी खिदमात की बदौलत वो कोई मकाम और मनसब या कोई गुंजाइश हासिल करना चाहते थे, जबकि अदालत का तकाजा ये था कि उनके लिए वो गुंजाइश ना रखी जाए। मुमकिन है कि बाज़ औक़ात खिदमात की बुनियाद पर यह गुंजाइश पैदा की जा सकती है अगर अहलियत हो और अदालत के ज़ाब्ते में आए। लिहाजा असल मेयार अदालत है। अगर अदालत के मेयार पे हो तो करीबी ताल्लुक़ जिससे है उसे भी ऊपर लाया जा सकता है, और अगर अदालत ना हो, अदालत ही मसला पे में टकराव आ जाए तो करीबी तरीन फ़र्द को रद्द भी किया जा सकता है, जैसे हम जनाबी अकील का मामला गुज़िश्ता दुरूस में मुतालिया कर चुके हैं। हम इस जगह पर पहुँचे थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उनकी जो सियासी नज़रिया अदालत उनके निगाह में था उसकी अमली तस्वीर क्या है, क्योंकि एक फ़िक्री और नज़री तौर पे बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगती हैं। इंसान फ़िक्री तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, तआक्कुल करता है और वो बयान में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अमली मैदान में आता है इंसान तो बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब का उसे सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे उसे कड़वाहट है और बहुत सारी जगहों पे उसे सख्ती और दुश्वारी से झीलना उसे पड़ता है और वो सख्ती और दुश्वारी का सामना करता है। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस अदालत के अमर को कैसे बरपा किया, एक तो यहाँ पे इस तरफ भी तवज्जो रहे कि यही अदालत का अमर है कि जो हमें रवायात लेने के ऊपर एतमाद का बायस बनता है कि हम कैसे रवायात लें। और यहाँ पे कुछ गुलूव के नज़रियात भी पाए जाते हैं आलम इस्लाम में कि जिसे बिला शक व शुबा एक हम गुलूव से बरमला तौर पे ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मंज़र एक इंसानी तब इंसानी के तहत किसी माशरे में नहीं देखते कि एक बुलंद और पाकीज़ा और बुलंद रुतबा शख्सियत को किसी ने आँखों से देखा हो और उसके बाद वो अपने इलाक़ों में जाके उसका इकरार करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसकी हर बात को हम अदालत के तराजू पे करार देते हुए तस्लीम कर लें, या ये उसे कहें कि उससे सब गुनाह सादिर हो सकते हैं लेकिन गुफ्तगू में वो आदिल है और गुफ्तगू में वो झूठ नहीं बोल सकता। लिहाजा अदालत सहाबा के एक गुलव का नज़रिया आलम इस्लाम में उभरा इसी अदालत के पैराए में कि एक सहाबी से जहाँ नेक पाकीज़ा बुलंद मरतबा सहाबा हैं जिनके बारे में आयत करीमा नाजिल हुई हैं, वहाँ पे इनके मुकाबिल भी अफराद मौजूद हैं जिनकी कुरान करीम ने आयत में मजम्मत भी की है। अब एक जहाँ पे अफराद ऐसे हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत से गहरे तौर पे मुतमस्सिक थे और ईमान उनकी निगाहों में दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत का हामिल था और बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दीं, लेकिन इसके मुकाबले में बाज़ ऐसे अफराद थे जिन्होंने गालम गलोच भी किया, कत्ल गारत भी की, फितने खड़े किए, गुनाहाने कबीरा भी अंजाम दिए, और उस बात का एतराफ़ भी मदे मुकाबिल हमारे यहाँ जो मकतब तफक्कुर है वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मासूम नहीं थे, बड़े बड़े गुनाह जन्म लिए, क्योंकि कुरान करीम के तमाम आप आयात में इस बात को मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने शिर्क के अलावा फ़कत एक गुनाह है कि जिसको अंजाम देने की सूरत में अगर वो अहले ईमान में से ही क्यों ना हो तब भी अबदी जहन्नम, खुलूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जहन्नम की नवीद उसे सुनाई है, और वो है कि एक मोमिन नफ्स मुहतरमा का कत्ल। और इमाम अली अलैहिस्सलाम में यही मसला पेश आया, जंग जमल में 10,000 से ऊपर बंदे एक तखमीने के मुताबिक कत्ल हुए दोनों तरफ, इसी तरह जंग सफीन में एक बड़ी तादाद सहाबे कराम की कत्ल हुई, आखिर इसका खून किसकी गर्दन पे? हम उसको फ़कत इश्तहाद का नाम दे के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह बाज़ ऐसे असहाब हैं जिन्हें इस कदर गालम गलोच किया गया कि वो रसूलुल्लाह के सामने अपने गिरिए को रोक नहीं सके और बेकाबू होकर रोने लगे और शिकायत की, और वही बाद में अफराद आलम इस्लाम के हीरो करार पाएँ, और इस सब का दायरा कार क्या है? अदालत सहाबा। लिहाजा अदालत सहाबा एक गुलूव का नज़रिया है। अदालत सहाबा से वो ये साबित करना चाहते हैं कि एक फ़र्द है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया और इस्लाम का इकरार करके इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो सहाबी है, वो सब गुनाह उससे सादिर हो सकते हैं अगर वो अहले इस्लाम में से करार पाए और इकरार इस्लाम के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ तो वो आदिल शुमार होगा, और जो हदीस रसूलुल्लाह के इनवान से वो बयान करेगा और उनकी तरफ जिस कलाम की नस्बत देगा हम उसे कबूल कर लेंगे। यकीनन तब इस इंसान तब इंसानी किसी भी माशरे में रहने वाली कोई भी पाकीज़ा तरीन इंसान हो उसके अतराफ में जब हर किस्म के अफराद हैं तो ये ज़ाबिता कोई भी ईजाद नहीं करेगा। यानी ये तो इसी तरीके से एक मिसाल होगी कि पाकिस्तान में एक पीर हो, ख़ुद वो बड़े आला पाए के आबिद जाहिद और आलिम फाजिल हैं और उनके मुरीदों में हर किस्म के अफराद हैं, बाज़ फासिकीन भी हैं और बाज़ बुलंदरजा मोमिनीन भी हैं। लेकिन जो फासिकीन हैं वो इस्लाम का इकरार करते हैं और जो इस्लाम का इकरार करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए और उसने उस पीर साहब के बारे में जो बातें बयान की हों, हम कहें वो सब आदिल हैं, क्योंकि पीर साहब कैसे ख़ता कर सकते हैं तालीम और तरबियत में। तो यहाँ पे ये बात हमें समझ आई कि अदालत के इनवान से बहुत सारे उमूर छेड़े गए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर में, और इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि इमाम ने अदालत के भी माना को वाज़ किया और अदालत की हदूद को मुअय्यन किया। हद्दा कि एक खुतबा है इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि जिसमें उन्होंने रिवायत लेने वाले रावी के मुतालिक इरशाद फरमाया है, और बड़ा ख़ूबसूरत वो खुतबा है कि अकली तौर पर उसमें तकसीम बंदी बनती है। लिहाजा खुलासा कलाम कि अदालत का अम्र एक ऐसा अम्र उस दौर में करार पाया कि जिसको मीज़ान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने करार दिया, और अदालत ही के वस्फ़ को मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र जो अहले इस्लाम में पैदा हुए उन्होंने किसी न किसी जाविये से ज़रूर इख्तियार किया। किसी ने हदीस के फ़न में, किसी ने अकायद के रूप में, और किसी ने सिफात बारी तआला के ज़ाइल में इसे बहस की। लिहाजा अदालत एक ऐसा कज़िया है जिसकी अहमियत से किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम अदालत से मुनहरिफ हो जाएं या अदालत को मीज़ान ना करार दें तो अदालत के मद मुकाबिल फ़कत जुल्म आता है, और जुल्म की नस्बत अल्लाह सुबहान तआला की तरफ नहीं दी जा सकती, अकलन भी नहीं दी जा सकती। और कुरान ने बारहा इसका इनकार किया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, किसी भी बंदे पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। यहाँ पे अब हम आएँ और अमली तस्वीर देखें, क्योंकि उम्मत के अंदर अमली तस्वीर के अतबार से दो रुख पाए जाते हैं अदालत का, जो मफहूम हम साबित करते हैं। एक तो आपकी खिदमत में ज़िक्र किया कि वो नज़रिया सहाबा के अदालत सहाबा के इनवान से बनता है, और वो जो नज़रिया अदालत सहाबा के इनवान से है तो यहाँ पर तमाम के तमाम सहाबा की तरह बराबरी के साथ अदालत की नस्बत देना बिला शक व शुबा एक गुलूफ़ की सूरत है और उसमें हकीकत का इनवान नहीं पाया जाता। जैसा कि हर अदना सी तवज्जो करने वाला इंसान भी इस बात को जान सकता है कि जब अगर नस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी नस्बत देना भी गुनाह है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बड़े गुनाह हैं अगर वो एक फ़र्द से जन्म ले सकते हैं, तो कैसे हम इस बात की गारंटी दे दें कि उससे ये वाला गुनाह सादिर नहीं होगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी नस्बत दी गई। हत्ता कि मुसलमान उम्मत इस बात की कायल है, एक हदीस लफ्ज़ी मुतवातिर शिया सुन्नी दोनों कुतुब में आई है, और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे गए और फरमाया कि मन कदब अलैया मुतअम्मिदन, कि जिसने भी जानबूझ के मुझ पर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम है। इसकी वजह क्या थी कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कैद हयात में हैं और उनके ऊपर झूठ बांधना शुरू कर दिया गया, यानी अभी कैद हयात में हैं, नहीं मालूम कि किसने झूठ बांधा। लेकिन ये बात मुसल्लम है कि मदीने मुनव्वरा में सहाबाए किराम मौजूद थे और इन्हीं में से किसी न किसी ने झूठ बांधा, या यहूदियों में कोई मुनाफिकीन होंगे या कोई और सबब होगा। हम ये नहीं कहते फ़कत सहाबाए किराम मुनाफिकीन भी थे, वो भी हो सकते हैं, इहतमालात मौजूद हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही झूठ बांधा गया। ऐसी सूरत में किस तरह से अदालत का ये मफहूम अख़ज़ किया जा सकता है? बस यहाँ पे, क्योंकि ये वाला हमारे तजिया तहलील से बहुत गहरे तौर पे रब्त रखता है, एक तरफ ये तफक्कुर पाया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर में जो माशरा मौजूद था उस पूरे माशरे की तरफ अदल की नस्बत दे दी जाए अदालत सहाबा के साथ, तो फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किसके ऊपर अदालत के मफाहिम को मुंतबिक करना है जब जुल्म है ही नहीं, मसाइल हैं ही नहीं, और बेहतरीन सदी है, जैसा कि एक रवायत अहले सुन्नत कुतुब में पाई जाती है, ख़बर वाहिद है, और उस तरह की रवायत भी किसी और जगह मौजूद नहीं है, और मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी वो रवायत वारिद नहीं हुई, लेकिन अहले सुन्नत कुतुब में उनके ज़वाबित के तहत सयुसनत रवायत आई है कि खैरुल قرنی کہ میری جو صدی ہے وہ سب سے بہترین، یعنی بالمعنی آپ کے سامنے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں کہ میری صدی سب سے بہترین صدی ہے، اس کے بعد جو صدی آئے گی وہ سب سے بہترین ہے، پھر اس کے بعد جو صدی آئے گی وہ سب سے بہترین ہے. اور اگر ہم 1400 سال اسلام کے لائیں، تاریخ کے اوراق کو ہم کھنگالیں، حدیث میں جو تاریخ صحیح اسانید کے ساتھ سامنے آئی ہے اسے مد نظر رکھیں، تو عالم اسلام پہ سب سے سخت ترین اور فتنے کے حامل جو سال ہیں وہ پہلے 100 سال ہمیں نظر آتے ہیں. لہذا یہ روایت یہ حقائق سے کسی طور پہ بھی سازگار نہیں ہے. یہاں پہ اب ہم جو واقعات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں تقریباً جو افراد پائے جاتے تھے وہ یا تو صحابہ ہیں یا تابعی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ آئیڈیل ترین صدی وہ صحابہ کی ہے اور صحابہ کے بعد تابعی کی ہے. اب ہم امام علی علیہ السلام کے جب مسائل پڑھیں گے تو مسائل یا صحابی سے ہیں یا تابعی سے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور فرد موجود نہیں ہے. یہ وجہ بنتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حالات زندگی کا تجزیہ تحلیل کم کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے مسائل ہیں اس کی نسبت جب دی جائے گی تو کوئی نہ کوئی ایسا فرد اس کے گھیرے میں آئے گا کہ جس کو آج کے دور میں عدالت سے صحابہ کے عنوان سے جذباتی انداز میں دیکھا جاتا ہے. حالانکہ علمی طور پہ اگر ملاحظہ کیا جائے تو تنقید سے کوئی شخصیت بھی، علمی تنقید سے البتہ، ایک دفعہ کینہ بغض رکھتے ہوئے تعصب کی بنیاد پہ تنقید ہوتی ہے اور ایک دفعہ علمی طور پہ ملاحظہ کیا جاتا ہے، اور یہ تنقید اہل سنت علمی حلقوں میں آج بھی موجود ہے. مثلا یہ مسئلہ جب اٹھایا جاتا ہے امام علی علیہ السلام حق پر تھے یا ام المومنین حضرت عائشہ، تو برملا طور پہ اکثریت اہل سنت اس بات کی قائل ہے کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ حق کے اوپر تھے. لہذا یہاں پہ جب ہم حق پہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً حق کے مقابلے میں ناحق ہی آتا ہے، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ تنقید کا ایک پہلو، اعتراض کا ایک پہلو جاتا ہے. اس لیے اس بات میں ہم اسی روش، علمی روش کو مد نظر رکھیں گے، نہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ جس میں ایک تفرقے بازی یا تعصب کی گنجائش پیدا ہو. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں رہتے ہوئے اور ایک حد تک اہل سنت کتب اور صحیح اسانید کے ساتھ جو مواد موجود ہے اس سے استفادہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. امام علی علیہ السلام نے جب عملی طور پہ اس کو اپلائی کیا، عدالت کے مفہوم کو اور عدالت کے میزان کو عملی جامہ پہنایا معاشرے کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے جو امام علی علیہ السلام سے ناراض ہوئے وہ ان کے قریبی بندے تھے. یہ وجہ بنی کہ امام علی علیہ السلام آہستہ آہستہ تنہا ہوتے چلے گئے. سب سے پہلی وجہ امام علی علیہ السلام کے وہ قریبی بندے بنے جو ان کے انتہائی قریب شمار کیے جاتے تھے. اس جگہ پہ ہمیں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے عالم اسلام کو جانیں. انشاءاللہ تعالی ایک پی ڈی ایف آپ کی خدمت میں ارسال کی جائے گی جس میں صرف ان حاکموں کا تذکرہ ہے اور علاقوں کا کہ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں حکام تھے، حکام بالا علاقوں کے اوپر والی بنائے گئے تھے، اور کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ملاحظہ بھی کریں گے. مثلا مکہ میں امام علی علیہ السلام نے حارث بن ربعی کو بنایا، جو کنیت جن کی ابو قتادہ الانصاری ہیں، معروف صحابی ہیں، جنگ احد اور جنگ خندق میں ان کے بڑے کارنامے بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں اور حضرت عباس کے بیٹے قطم کے عنوان سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی وفات بھی 55 ہجری میں ہے. مدینہ منورہ کے والی ہیں، یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے بصرہ کا والی بنایا، کوفہ کا والی ہے، یعنی حاکم. ان حاکموں کے نام اور ان کا تذکرہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. اس جگہ پہ اس نقطے کو پھر آپ کی خدمت میں ابھارا جائے کہ امام علی علیہ السلام کے عدالت کے مفہوم کو جب ہم اجتماعی اور اس اسلامی ریاست کے اوپر منطبق ہونے کے پہلو کو دیکھیں تو اس سے یقیناً یہ نظریہ بہت متاثر ہوتا ہے جسے عدالت صحابہ کے عنوان سے آج ہمارے ہاں برپا کیا گیا ہے، اور اس کو بغیر کسی ایسی دلیل کہ جو سب کے لیے قانع کنندہ ہو اس کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. आइए अब हम इसको मुलाहिजा करते हैं कि आज हम जिस मकतूब को पढ़ रहे हैं वो मकतूब जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को लिखा गया। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मकतूब नंबर 41 है, 41 मकतूब है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक बहुत कद आवर शख्सियत सहाबा किराम में शुमार होती हैं। अकाबिर में इनका शुमार नहीं होता, सिगार में शुमार होता है कि जैसा कि ज़हबी, ज़हबी एक ऐसी शख्सियत हैं कि मकतबे तशय्यो के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उनके वजूद में दुश्मनी का पहलू पाया जाता है, लेकिन इल्मे रिजाल अहले सुन्नत में उनको बहुत कवी शुमार किया जाता है। मुताखिर हैं, 8वीं सदी हिजरी के हैं इब्न हजर इस्कलानी और ज़हबी, ये दो अहम सतून शुमार होते हैं अहले सुन्नत इल्मे रिजाल के। चूँकि ये तशय्यो की तरफ बिल्कुल ही नहीं माइल थे और एक बड़ी हद तक दुश्मनी भी रखते थे, लिहाजा इनकी किताबों की तरफ अंधाधुन एतमाद किया गया। आपकी खिदमत में इस वजह से हम जो भी हालात बयान करेंगे वो ज़हबी ही से हम करेंगे ताकि कोई एतराज़ की गुंजाइश उसमें बाकी ना रह जाए। ज़हबी, उन्होंने शम्सुद्दीन ज़हबी, उन्होंने अपनी किताब सीरुल आलाम नुबला के मारूफ किताब है, उन्होंने इल्म रिजाल और तारीख़ के ऊपर कई किताबें लिखी। सीर उनकी किताब है, मीज़ानुल एतदाल उनकी किताब है, और इसी तरह से गालिबन अल काशिफ उनकी किताब है, मुख्तलिफ कुतुब हैं। ये जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो सीरुल आलाम नुबला से है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस जो ज़हबी ने तहरीर किया है उसके ज़ैल में आपकी खिदमत में ज़िक्र किया जाए, क्योंकि शिया सुन्नी दोनों की नज़र में इनकी कीमत है। मकतबे तशय्यो की कुतुब अहादीस में भी एक बड़ी मकदार अहादीस की अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इनसे नकल हुई है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 10 साल के थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई। बाज़ कौल ज़िक्र की गए हैं कि 13 साल के थे, लेकिन ज़हबी ने यह तहरीर किया है कि मेरी नज़र में कवी कौल यही है कि उनकी उम्र 10 साल थी, लिहाजा उस वक्त वो अभी बालिग भी नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रहलत हो गई। बाज़ हदीसें मनकूल हैं रसूलुल्लाह की तरफ कि उन्होंने कहा कि ये बच्चा तावील आयात और क़ुरान की तफसीर का इल्म इसके पास, और अल्लाह इसे दीन का तफक्को अता फरमाएगा। अभी हम इन हदीसों पर बहस नहीं करते सही सनद हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मुस्तकबिल में जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इल्म और फ़ज़ल के एतबार से माशरे में शोहरत रखते थे और एक कद आवर शख्सियत शुमार होते थे। इनकी शख्सियत इल्मी एतबार से भी बुजुर्गी की हामिल थी और शख्सी एतबार से भी, कि वो शख्सी अच्छा कद काठ रखते थे, और कबायली एतबार से चूँकि हाशमी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, इसलिए भी इनकी मंजिलत उस माशरे में ज़्यादा मारूफ थी, क्योंकि बनी हाशिम हाशमी तौर पे बनी हाशिम में से होने की वजह से भी मकबूलियत थी, और इल्मी जहानत और फतानत और क़ुरान और फ़िक़्ह वग़ैरह के उमूर में महारत की वजह से भी थी। और तीसरी एक बड़ी वजह, खलीफ़े दुव्वम हज़रत उमर ने इनको काफ़ी करीब किया हुआ था, लिहाजा वो इनकी इज़्ज़त एहतराम और अज़मत के भी कायल थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये वजह बनी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में माशरे के अंदर जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की ख़ास अहमियत शुमार होती थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी के पेश नज़र उनको बड़ी बड़ी मुहिमात में आगे भी रखा, मसलन जब खवारिज की तरफ भेजा, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम इन जंगों में से किसी जंग को भी चाहते नहीं थे कि जंग हो, यानी उन्होंने कई कोशिशें की। जब इमाम ने देखा कि ये अब हटने वाले नहीं हैं और हतमन व हतमन जंग वो थोप देने वाले हैं, तब इमाम मैदान में उतरे, वहीला इमाम अली अलैहिस्सलाम वो हरगिज़ मैदान में वारिद नहीं हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे नहरवान हुई खवारिज के साथ, तो इस जंग में भी बड़े नाला और गमज़दा थे, कई दफ़ा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने नुमाइंदे के तौर पे खवारिज के दरमियान भेजा, क्योंकि खवारिज वही सहाबा और ताबईन हैं, कोई बाहर से तो तीसरी जमात उधर मौजूद नहीं है, और उनमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कीमत भी थी। तो इंशाल्लाह ताला हम जंग नहरवान का भी तज़िया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब अदालत को नाफिज़ किया तो क्या क्या मसाइल उन्हें दरपेश आए, उसके ज़ैल में हम जंग नहरवान को भी पढ़ेंगे। आज आपके सामने मक्तूब बयान किया जाता है यही। इसका मुकदमा हमने इसलिए मुफसलन बांधा क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शख्सियत बहुत कदावर शख्सियत है और उनकी शख्सियत को बयान करने से पहले ये चंद उमूर ज़िक्र करना ज़रूरी थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उनकी निगाह में अदालत से बढ़कर कोई क़ुर्बत नहीं है, क्योंकि अदालत के ज़रिए से अल्लाह के अहकाम नाफिज़ किए जा सकते हैं, अदालत के ज़रिए से मज़लूम को उसका हक़ दिया जा सकता है, अदालत के ज़रिए से ज़ुल्म सितम को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक जगह पे जम नहीं हो सकते। अब जब वो माशरे में अदालत को बरपा करने लगे तो अपने वालियों की तरफ, जिन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गवर्नर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या वालियों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनाया हुआ था, उनकी तरफ से जब छोटी सी छोटी चीज़ भी दिखाई देती, मोहलत ज़रूर देते इमाम अली अलैहिस्सलाम, मोहलत दिया करते थे, लेकिन उनको सरजनिश सख्त तरीके से किया करते थे। चाहे वो कितना ही माशरे के अंदर कदावर क्यों ना बने, कितना ही उसका कद या शख्सियत बुलंद शख्सियत क्यों ना हो, उसको शदीद अल्फाज में सरजनिश कर दिया करते थे अगर उसने अदालत के उमूर के ख़िलाफ़ कदम उठाया। मकतूब नंबर 41 में बाज़ उम्माल की तरफ है इशारा और हकीकत में ये जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। इसके अल्फाज क्योंकि बहुत सख्त हैं, इस वजह से बाज़ ने इनकार किया कि ये जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए नहीं है, बल्कि बाद में आने वालों ने इसे घड़ के उनकी तरफ नस्बत दी है। लेकिन इसकी बलागत और इसके जो अहले सुन्नत कुतुब में ही ये मकतूब का आना है उससे ये पता लगता है कि ये जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही की तरफ है। लेकिन इस तरह से क्यों अल्फाज आए उसको इंशाल्लाह ताला हम बाद में देखेंगे। ये भी हो सकता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के वाली को बदनाम करने के लिए बाज़ नस्बतें बाद में ईजाद की हों, लेकिन हकीकत यह है कि इस मकतूब को अगर हम पढ़ें तो इसमें ऐसे हमें शवाहिद मिलते हैं कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तहरीर किया। आगाज़ में इमाम फरमाते हैं कि अम्मा बाद फ़ाइन्नी कुन्तु अशरकतु फ़ी अमानती। अल्बत्ता इससे पहले यह कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बारे में इस मकतूब को सुनाया जाए, ये बयान किया जाए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा का कुछ अर्सा वाली बनाया था। बसरा का वाली बनाया चूँकि इनके जो भाई थे, इनके भाई को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मक्का का वाली बनाया, और दूसरी तरफ ये बसरा के वाली थे। और इस तरफ भी इशारा किया जाए कि जो ज़हबी ने तहरीर की है उसके मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम से बाज़ लोगों पर वाज़ इख्तलाफ कर दिया करते थे, क्योंकि इनकी अपनी इल्मी शोहरत थी, तो इस इल्मी शोहरत की वजह से वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपनी राय रखते थे। इसलिए अहले सुन्नत कुतुब में वारिद हुआ है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बाज़ गाली हजरात को जलाया, कत्ल किया और जला दिया। तो इसके ऊपर इब्ने अब्बास ने एतराज़ किया और कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब वाला अज़ाब किसी को ना दिया जाए। इसके ऊपर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वैलुन या इब्ने उम्मिल फ़ज़ल, ए उम्मे फ़ज़ल के बेटे, वैहुन का कलिमा वारिद हुआ। इस वैहुन के कलिमे को अब ज़िक्र करके बाज़ अहले सुन्नत ने कहा कि ये मदह सताइश की, लेकिन वैहुन का कलिमा अरबी ज़ुबान में अक्सर और बेशतर मवारिद में मजम्मत के लिए वारिद होता है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वैहुन का क्या मतलब और कौन सा माना ज़्यादा इधर साजगार है, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अकाबिर में अहले सुन्नत के अगर नुक्ता नज़र से देखें अकाबिर सहाबा में से हैं और सारी उम्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे हैं और इल्म में उनके मुकाबिल कोई हस्ती मौजूद नहीं है। बिला शक व शुबा कोई हस्ती अहले सुन्नत मुत्तफिक हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कोई मुकाबला नहीं है इल्मी हवाले से, लेकिन जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास यहाँ पे इख्तलाफ कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो अपने आप को साहिब राय समझते थे और अपनी बाज़ बातों के ऊपर अमल करते थे, तो ये एक इख्तलाफ की वजह भी बन सकती है। आए अब हम इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्या ख़त इसमें लिखा। ये जो मकतूब आपको बयान किया जा रहा है अहले सुन्नत कुतुब में से, इसको इब्ने कुतैबा ने अपने गरीबुल हदीस में ज़िक्र किया है और बलादुरी ने इसको अनसाबुल अशराफ़ में ज़िक्र किया है, और इसके अलावा शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने کشی کی مناسبت سے اختیار و معرفت الرجال میں اسے نقل کیا ہے، اور اس طرح سے پھر آگے جو سند ذکر کی ہے یہ اہل یمامہ اور معلہ بن حلال اور شعبی سے ہے. شعبی اہل سنت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تابعی تھے اور امام علی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، اکثر صحابہ کو شعبی نے دیکھا، اور اہل حنفہ جو ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ شعبی کی مراسیل کو حجت بھی مانتے ہیں بالخصوص. یعنی اگر شعبی بغیر کسی صحابی کے ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل کر دے تو یہاں پہ صحابہ کے بغیر تو تابعی نہیں پہنچ سکتا رسول اللہ تک، لیکن اس کے باوجود شعبی کی اتنی وہ قدر و منزلت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہوگی. تو یہ شعبی کے ذریعے سے ہی مکتوب وارد بھی ہوا ہے، مورخین نے اسے ذکر کیا ہے. ابن ابی الحدید ایک معتزلی شاعر ہیں، چھٹی ساتویں صدی ہجری میں انہوں نے شرح کی، نہج البلاغہ کی، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کافی کلام کیا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر ان کو جب مخاطب ہے اور سخت الفاظ ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ اس کے حوالے سے حساسیت کا مظاہرہ کیا. آئیں اب ہم مکتوب کی طرف دیکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اما بعد فإنی کنت اشرکت فی امانتی، کہ میں نے تمہیں اپنی امانت میں شریک کیا تھا، وجعلتک شعاری وبطانتی، اور میں نے تمہیں اپنا خاص بندہ بنا کے رکھا اور اپنے تمام امور میں تمہیں شامل کیا، ولم یکن من اہل رجل اوثق منک فی نفسی. اس جملے سے خصوصاً بعض کہتے ہیں کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہی کے لیے ہے کہ ولم یکن من اہل رجل، کہ میں نے اپنے خاندان پہ نگاہ کی تو مجھے تم سے زیادہ قابل اعتماد بندہ اپنے اہل و عیال میں اور اپنے اس قبیلے بنی ہاشم میں کوئی نظر نہیں آیا. لمواستی و مواظرتی و ادائی الامانت الیہ، کہ تم سے میرا تعلق بھائی چارے کا بھی ہے اور تم نے میری مدد امداد بھی کئی مواقعوں پہ کی، اور ادائے امانت کے اعتبار سے میں نے تمہیں سب سے قریب اپنے پایا. فلما رأیت الزمان علی ابن عمک، یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہی سے بنتا ہے، کہ جب تم نے اپنے چچا زاد، کیونکہ جتنے والی ہیں اس میں صرف جناب عباس ہی کے بیٹے ہیں جو چچا زاد ہیں، بقیہ تو چچا زاد نہیں ہے امام علی علیہ السلام کے. لہذا فلما رأیت الزمان، جب تم نے دیکھا کہ زمانہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، علی ابن عمک، کہ اپنے چچا زاد کے اوپر زمانے کو ٹوٹ پڑا دیکھا، قد قلب والعدو وقد حرب، کہ تم نے دیکھا کہ مسلسل معاشرہ غضبناک ہو رہا ہے اور جنگ کی صورت اوپر آ چکی ہے، تو وہ امانت الناس قد خزیت، اور لوگوں کی امانتیں لوٹی جا رہی ہیں. یعنی جب تم نے یہ منظر دیکھا کہ جنگیں چھڑ چکی ہیں، ضعیف کیا جا رہا ہے امام علی علیہ السلام یعنی تمہارے چچا زاد کو، اور لوگوں کی امانتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہذہ الامت قد فتنت، اور امت کو فتنوں میں، طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دیا گیا ہے. وشغرت، کہ شغرت کہتے ہیں کہ خیر کا اٹھ جانا، اور امت سے خیر اور بھلائی اٹھا لی گئی ہے. قلبت لابن عمک، تو تم بھی اپنے چچا زاد کے حوالے سے تبدیل ہو گئے. ظہر المجن ففارقته مع المفارقين، اور چھوڑنے والوں کی طرح تم نے بھی اسے تر کر دیا اور چھوڑ دیا. وخذلته مع الخاذلين، اور اسے پست کرنے میں تم نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور جتنا اس کو ہلکا کر سکتے تھے اور ضعیف کر سکتے تھے تم نے دوسروں کے ساتھ مل کے ضعف کے ضعیف کرنے کی کوشش کی. وخنته مع الخائنين، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ تم نے خیانت کی. فلا ابن عمک آسیت ولا امانت ادیت، نہ تم نے اپنے چچا میرے چچا زاد ہونے کا تم نے خیال کیا، اور نہ امانتوں کو ادا کرنے کا کوئی پاس اور خیال رکھا. وکأنک لم تکن اللہ تريد بجہادک، گویا کہ تم نے جو جہاد لڑا اس سے تمہارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں، تم نے تو قربتاً اللہ، قرب الہی کے لیے جہاد نہیں لڑا. وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكَ، یا تیرے رب کی طرف سے کوئی تیرے اوپر شاہد ہے ہی نہیں، کوئی تیرا نام اعمال لکھنے والا نہیں ہے. وَكَأَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَقِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَن دُنْيَاهُمْ، یا या इस उम्मत को उनकी दुनिया में तुम भी धोखा देने चाहते थे और मक्कारी के साथ काम लिया कि ताकि इस उम्मत के अंदर रहते हुए दुनिया को समेट लो और इकट्ठा कर लो। वतनवी गिर्रतहुम अन फैयहिम, कि तुम भी इसके धोखे में आ जाओ और जो माल समेट सको समेट लो। फलम अमकनत का अशिद्दतु फ़ी ख़ियानतिल उम्मा असरातल कर्रा, कि जब तुमने देखा कि इस उम्मत की ख़ियानत में शिद्दत जो है वो आन पड़ी है और उसने हर तरफ सख्ती और मुश्किलात ने आन घेरा है, असरातल कर्रा, तो तुम भी उसी तेज़ी से बदल गए। वाजल तल वसबा, और उछल के इस दुनिया के ऊपर तुम आ पड़े। वक्त तफ्त मा कदरता अलैहिम मिन अमवालहिम अलमसूना ले अरामिलहिम व अयतामहिम, और तुमने उस माल के ऊपर झपट पड़े कि जिसको इसलिए इकट्ठा किया गया था ताकि बेवाओं का हक अदा किया जाए, ताकि यतीमों के माल और बेवाओं के माल को तुमने उनके ऊपर आके अपना तसल्लुत जमा लिया। यानी हुआ ये कि इन्होंने बैतुल माल से एक बड़ी मकदार में माल को हथियाया, जमा किया, और ये माल मुख्तस था बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए, क्योंकि जंगों में एक बड़ी तादाद लोगों की शहीद हुई और उस शहीद होने की वजह से घर हर दूसरे घर में बेवा और यतीम बच्चे मौजूद थे, और ये उस वक्त के बहुत बड़े मसाइल में से एक मसला था, क्योंकि जंग जमल हुई, जंग नहरवान हुई, जंग सिफीन हुई, तो हर दूसरे एक घर में कोई ना कोई शहीद मौजूद है, और शहीद की वजह से उधर सख्त तरीन फ़क्र और गुरबत के हालात तारी हैं, और उधर से इमाम अली अलैहि सलाम मुसलसल जंगों के लिए पुकार रहे हैं। लिहाजा वहाँ पे जो अफराद बचे हुए थे उन्हें भी अपने घराने बेवा और यतीम ही नज़र आती थी, और इस यतीमी और बेवाई में उनके घर के अखराजात को पूरा करने के लिए बैतुल माल में इतने वसाइल मौजूद नहीं थे, क्योंकि खलीफ़े सुवम हज़रत उस्मान के दौर में सब मसला ही बैतुल माल से शुरू हुआ, कि उसे बिल्कुल चटियल मैदान की तरह खा जाया किया करते थे और वो एक मैदान की तरह खाली पड़ा रह जाता, जैसे अभी पाकिस्तान का हाल है, कोई भी आ जाए वो बैतुल माल को देखते खाली पड़ा है, बड़ी उम्मीदें लेके आता है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब उम्मीदें लेके आए और सब उम्मीदों पर पानी फिर गया जब पता लगा बैतुल माल में कुछ है ही नहीं। अब उन्हें दूसरी तवक्को वज़ीर आज़म साहब को ये थी कि मैं लोगों को कहूँगा वो बड़ी मकदार में बैतुल माल में पैसा डाल देंगे, तो किसी ने पैसा डाला ही नहीं इतनी बड़ी मकदार में, तो अब यहाँ पे तीसरा उन्हें मरहला फिर बहकारी बन के जाना पड़ा, जिस पे वो अपनी तकारीर में मुसलसल एतराज़ात उठाया करते थे, उन्हें वही काम करना पड़ा और वो बहकारी बन गए, और उन ममालिक के सामने बहकारी बने कि इलेक्शन से पहले जिन ममालिक के ऊपर खूब तनकीद कर चुके थे कि मैं पूरी कौम के को जलीलो ख़ार करके एक मसा आले सऊद से पैसा मांगा जाए, उनके सामने पूरी कौम को जलीलो ख़ार कर दिया जाए, इस तरह के आप भी कई क्लिप देख चुके होंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो मेयार अदालत को देखते, उन्हें ये परेशानी नहीं थी कि ये क्या सख्तियाँ आएंगी, यानी इस हवाले से कि वो हर परेशानी को झील लेना चाहते थे, वो हर परेशानी को कबूल कर लेना चाहते थे, लेकिन अदालत के ना होने की परेशानी नहीं काटना चाहते थे। जुल्म आ जाए इसको बर्दाश्त नहीं करते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम। बकिया परेशानी मसाइब क्राइसिस आते हैं, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम का हम फरमान पीछे पड़ चुके हैं कि अदल के नफाज की वजह से जिसे तंगी महसूस हो तो जुल्म से तम तो उस पर मज़ीद तंग हो जाएगा, और आने वाले ज़माने ने देखा कि इस कदर सख्त और बुरे हालात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं हुए जितना बाद में उमवी दौर में हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बाज़ारों में फिराया गया, सहाबा को फांसियाँ चढ़ाया गया, हज्जाज बिन यूसुफ़ आगे मुसल्लत हो गया और खूब जलीलो ख़ार किया सहाबा को, कि तारीख़ तबरी में बाकायदा बाब बांधा गया है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने किस तरह से जलीलो ख़ार किया, काबा को गिरा दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की बेहरमती की गई, 10 दिनों के लिए मदीना को हलाल करार दिया गया, वाक़ हुर्रा हुआ कि अभी भी जन्नतुल बकी में सबसे तवील कब्र वाक़ हुर्रा की याद दिलाती है, जिसमें कहा जाता है कि 700 के करीब सहाबा को कत्ल करके एक जगह पे दफन किया गया। ज़माने ने देखा कि फिर तो घर भी महफूज नहीं रहे, घरों से ख़वातीन को उठाया गया, सहाबा किराम की नामूसों को पामाल किया गया, खाने काबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को पामाल किया गया। लिहाजा इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमाम का ये कलाम किस कदर जानदार है कि जो अदल के नफाज के वक्त जो सख्ती आती है उसे नहीं झीलता, तो फिर जो जुल्म जोर की सख्ती लाती है वो तो इंसान को हर लिहाज से जलील व पस्त करके रख देती है। इसलिए यही काम हुआ कि अब चूंकि एक पीछे रविश जारी थी हज़रत उस्मान के दौर में कि जो वाली होते थे वो बैतुल माल से अपना बड़ा हिस्सा निकाल लिया करते या माल को बड़े पैमाने पे लूट लिया करते थे, और ये वजह बनी थी उस दौर में कि गरीबों को हक नहीं मिलता था, वो शराब नोशी और फिस्क फजूर को एलानिया तौर पे देखते तो वहाँ पे गुस्से से भर जाते और उन्होंने फिर हमला आखिर में दारुल खिलाफा के ऊपर कर दिया। लिहाजा यहाँ पे आप देखें क्यों इमाम फरमाते हैं कि तुमने भी उस चीज़ को जो तुम्हारी कुदरत में यतीमों और बेवाओं का माल आया तुमने उसे उचक लिया, इख्तफ्ता मा कदरता अलैह है, यानी जितना तुम्हारी कुदरत में बेवाओं और यतीमों का माल आ सकता था तुमने उचकने में एक लहजा देर नहीं की और उसे उचक लिया। इख्तताफ़ ज़िबिल अज़ल दामियतल मेज़ल कसीरते कसीरता, कि उसी तरह से तुमने इसको उचक लिया कि जिस तरह से एक दबे पांव भेड़िया आता है और वो एक मजरूह बकरी को अपने दांतों में नवाला लेके ले चला जाता है, मौका गनीमत पाता है, खामोशी से एक ज़ख्मी भेड़ के ऊपर एक ज़ख्मी बकरी के ऊपर वो हमलावर होता है। फ़हमलतहु इलल हिजाज रहीब सदर बिहमले ही, और तुमने चुपके चुपके उसे हिजाज और मक्का की तरफ रवाना भी कर दिया। गैर मुतअस्समिन मिन अख्दही, किसी किस्म के तुम्हें गुनाह का ख्याल भी ना आया। कअन्नका ला अबा लिगैरिका हदरत इला अहलिका तुरासका मिन अबीका व उम्मिका, कि तुमने इस तेज़ी से इन चीज़ों को उचक लिया था कि जैसे इस तो ये जो तुरास है ये जो माल है वो तुम्हें अपने माँ बाप से तरके और विरासत में गोया के मिला है, यानी तुमने इतनी खामोशी से ये काम ली किया और जो तुम्हारे जेरे तसल्लुत और तुम्हारे हाथों के नीचे माल आया उसे पकड़ के जमा किया, हिजाज की तरफ रवाना कर दिया और किसी भी गुनाह का तुम्हारे दिल में एक छोटा सा एहसास भी नहीं आया। गोया कि ये माल जो तुम ले के जा रहे हो तुम्हें तरके में अपने माँ बाप से तरके में ये माल मिला है। फ़सुबहानल्लाह अमा तुमिनु बिलमआद, सुबहानल्लाह क्या तुम्हें क़यामत पर यकीन और ईमान नहीं है। अवामा तखाफ़ नक़ाशिल हिसाब, क्या तुम्हें किसी किस्म के हिसाब का डर और खौफ नहीं है। अय्युहल मादूदु काना इंदना मिन ज़विल अलबाब, ए वो जिसके ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, जिसे हम अहले होशुमंद अहले अक्लो खिर्द में शुमार किया करते थे। कैफ़ तुसीगु शराबन व तआमन, तुमने किस तरह से इसको अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करने का सोच लिया। वअन्त तअलम अन्नक तअकुलु हराम, तुम्हें पता है मालूम है यकीन है कि हराम खा रहे हो। व तशरबु हरामा, और हराम पी रहे हो। व तुबातउल अमाम, और कनीज़ों को तुम खरीदते हो, यानी बैतुल माल में कनीज़ें भी थीं कि उसको ख़रीद के आगे चल पड़े। वतन के हनसा मिन माल यतामा वल मसाकीन वल मोमिनीन वल मुजाहिदीन, और बेवाओं यतीमों मोमिनीन और मुजाहिदीन के माल से ख़वातीन से निकाह रचाते हो। अल्लज़ीना अफ़ा अल्लाहु अलैहिम हाज़िहिल अमवाल, ये अल्लाह ने अमवाल इनके लिए करार दिए थे। व अहरज़ बिहिम हाज़िहिल बिलाद, और इस जगह पे रहने वालों के लिए अल्लाह ने महफूज किए थे, उनसे तुम ख़वातीन से निकाह रचाते हो, कनीज़े ख़रीदते हो, जबकि ये माल मोमिनीन मुजाहिदीन बेवाओं और यतीमों का है। फ़त्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। वर्दुद इलाहा उला इल्क़ौमि अम्वालहुम, इन लोगों के माल को फ़ौरन पलटा दो। फ़इन्नका इल्लम तफ़अल, अगर तुमने ये ना पलटाया और ये काम ना किया। सुम्म अम्कननिल्लाहु मिनका, और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे ऊपर तसल्लुत दे दिया और तुम मेरे काबू आ गए। लऔज़िरन्न इल्लल्लाह फ़ीका, तो मैं अल्लाह के सामने अपने आप को तुम्हारे बारे में सुरखरू करूँगा, अल्लाह के सामने अपने आप को सुरखरू करूँगा, किसी माज़रत को कबूल नहीं करूँगा। वलअज़्रिबन्नका बिसैफिल्लज़ी मा ज़रबतु बिही अहदन इल्ला दखला दखलन्नार, और इस तलवार से मैं तुम्हें वो ज़र्ब लगाऊंगा कि मैंने जिसको भी ये ज़र्ब लगाई है वो सीधा जहन्नम में दाखिल हुआ है। वल्लाहि कसम बखुदा लो अन्नल हसन वल हुसैना फ़अला मिस्ल लज़ी फ़अलता, कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर हसन और हुसैन ने भी ये काम किया होता जो तुमने किया है, मा कानत लहुमा इंदी हवादतुन, तो मेरी निगाह में उनके लिए किसी किस्म का शख्सी मेल और मिलान ना होता, और मैं वही करता जो तुम्हारे साथ में करूँगा या जो उनकी अदल के तकाज़ों के तहत सज़ा बनती है। वला ज़फ़िरा मिन्नी बे इरादतिन, वो दोनों मेरे इरादों से निजात ना हासिल कर पाते, हत्ता आखुज़ल हक़ मिन्हुमा, जब तक मैं इन दोनों से हक़ को ले ना लेता, व उज़ीहल बातिल अन मज़लमतिहिमा, और इनकी मज़लमतों से बातिल को दूर फेंक के ना आ जाता, यानी हक़ को ले लेता और बातिल को ख़त्म करके रख देता। व उक़्सिमु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बिल आलमीन की कसम खा के कहता हूँ, मा यसुर्रुनी अन्नमा अखदतहु मिन अमवालिहिम हलालुन ली, कि जिन अमवाल को तुमने उठा लिया है और उचक लिया है, मैं कसम बखुदा अपने आप को उसे हलाल नहीं करार देता, मुझे ये खुशी नहीं है कि मैं अपने लिए उसे करार दे दूँ। अतरुकुहु मीरासन लिमन बादी, और फिर ख़ुद अपने पास अपना माल करार दे के अपने बाद वालों के लिए मीरास करार दे दूँ, कोई मुझे इसकी तरफ रग़बत नहीं है। फ़ज़ाहिर वैदन फ़कअन्न कद कद बलग़्त अल-मदा, बस तुम अपनी आखिरी हद तक पहुँच चुके हो, यानी तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है, बुढ़ापे में कदम रखा है, वो दफिन तहत सरा, और ज़मीन के नीचे तुम्हारी टांगें चली गई हैं, यानी ज़िंदगी के दिन बाकी नहीं है, बुढ़ापे में क्या काम कर रहे हो। वो उर्ज़त अलैका आमालुका बिल महल्लज़ी युनादि ज़ालिम फ़ीहि बिल हसरा हसरते, और उस जगह से तुम्हें निदा दी जा रही है, उस जगह की तरफ इन आमाल जो तुमने अंजाम दिए हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारे आमाल गोया कि उस जगह रख दिए गए हैं जिस जगह में ज़ालिम व हसरता की निदा बुलंद करता होगा। वो यतमन्ना अल-मुदय्यु रजअ, और जिसने भी ये ज़िंदगी ज़ाया की वो दोबारा लौटने की जहाँ पे उम्मीद और तवक्को और तमन्ना करेगा, यानी तुम क़्यामत में गोया के हाजिर हो चुके हो, कब्र में पाँव पड़ चुके हैं, ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, फना के तुम करीब आ चुके हो। वला तहीन मनासिन, और इससे फिर छुटकारा नहीं है जो कब्र में पहुँच गया। वस्सलाम, ये कह के इमाम ने यह खुतबा अपना मकतूब ख़त्म किया। आपने मुलाहिज़ा किया कि सिर्फ इस बात के ऊपर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस कदर शिद्दत दिखाई कि बैतुल माल से यतीमों बेवाओं मुजाहिदीन मोमिनीन का माल उठाया गया था, बास निकाह रचाए गए और कनीज़ें बनाई गईं, लिहाजा इमाम ने मोहलत दी और कहा फ़ौरन लौटा दो, लौटा दोगे तो ठीक, नहीं लौटाओगे और मेरे कब्ज़े कुदरत में फिर आ गए तो मैं अल्लाह के सामने अपने आप को सुरखरू करूँगा और कोई माजरत भी कबूल नहीं की जाएगी। और ये काम अगर इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम के इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि छोटे नाम नहीं हैं, इंसान की रूह कांपती है ये नाम लेते हुए, इस कदर ये बुलंद अजमत नाम है इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम फरमाते हैं अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो तब भी वो मेरी गिरफ्त से ना बच पाते, यानी ये बयान करना चाह रहे हैं कि इस अम्र में मैं अल्लाह के सामने सुरखरू करूँगा, अदालत वजीफ़ा इलाही है मेरे ऊपर, अल्लाह ने यह वजीफ़ा आयद किया है, मज़लूम को उसका हक दे के रहूँगा, बेवाओं यतीमों का माल जो तुम उठा के ले के जा रहे हो मैं उन तक ये यतीमों और बेवाओं का माल पहुँचा के रहूँगा। लिहाजा इमाम ने जो करप्शन थी हुकूमती मामलात में करप्शन, उसके दरवाज़े बंद किए। अगर किसी रियासत में ये हुकूमती दरवाज़े करप्शन के बंद ना हों तो जितनी आइडियल क्यों ना हुकूमत हो, जितने बेहतरीन कवानी क्यों ना हो, वो ख़त्म हो के हुकूमत रह जाती है, वो कामिलन ख़त्म हो के रह जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में यह भी ऐसा ही था कि उन्होंने खयानत करने वाले हाथों को सख्ती से बंद किया और ख़ुद एक एक माल का हिसाब करके उसके हवाले किया करते थे। कोई माल गनीमत आ जाता, माल फ़ै आ जाता, खुमस कहीं से आ जाता, कोई हदिया आ जाते, बैतुल माल में माल इकट्ठा होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक हकदार को उसका हक उसके हवाले ना कर दें। यही सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की थी। इंशाल्लाह ताला हम अगले नमूने कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अदालत को कैसे नाफिज़ किया कि यहाँ पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको फ़ौरन गिरफ्त में नहीं लिया, मकतूब लिख के होशदार दे दिया, तंबीह कर दी। और वाक़या से पता लगता है जो आगे जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से उनके इंतहाई नरम और बेहतरीन कलाम मौजूद हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह माल वापस लौटा दिया। लिहाजा वहाँ पर इस रविश को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर ख़त्म किया जो खलीफ़े सिवम के दौर में आलम इस्लाम में छा चुकी थी। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अदल के नमूने अगले दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व आलिही ताहिरीन।